अनु, थोड़ी देर और आराम कर लीजिए। शादी के चक्कर में आपको बिल्कुल आराम नहीं मिला है। सुबह सबके उठने से पहले काम में लगती हैं, सो सबके सोने के बाद कहीं जाकर आपको फुर्सत मिलती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप बीमार पड़ जाएंगी। अहाना को उठते देखकर अक्षय भी उठकर बैठ गया। घड़ी सुबह के 5 बजा रही थी। अक्षय की बातों में अपने लिए फिक्र महसूस करते हुए अहाना के लबों पर सौम्य सी मुस्कान बिखर गई। कुछ नहीं होगा हमें, हमारे देवर और बहन की शादी थी, घर की बड़ी बहू होने के फर्ज तो हमें निभाने ही होंगे। शादी ब्याह में काम तो बढ़ ही जाता है, पर बस एक दो दिन की और बात है, फिर सब अपने अपने घर चले जाएंगे और हम अपनी नॉर्मल दिनचर्या में लौट आएंगे। माना आपके देवर और बहन की शादी थी, घर की बड़ी बहू होने के फर्ज आपको ही निभाने थे, फिर भी आप हैं तो एक इंसान ही, और इंसान के शरीर को आराम की जरूरत होती ही है, जो अगर ना मिले तो सेहत बिगड़ जाती है। और बीते दिनों से जैसे आप एक टांग पर यहाँ से वहाँ नाचते हुए सारे काम देख रही हैं और पल भर भी आराम नहीं करती हैं, अपना ख्याल नहीं रखती हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर तबीयत खराब हुई तो आप है ना, हमारा इलाज कर दीजिए। डॉक्टर पति होने का इतना फायदा तो होना चाहिए हमें। चंचल मुस्कान लबों पर बिखेरते हुए अहाना ने अपनी कोमल बाहों को उसकी गर्दन पर लपेट दिया। अहाना का बेफिक्री भरा जवाब सुनकर अक्षय की भौहें तन गईं। मतलब आपका पति डॉक्टर है तो आप अपनी सेहत को लेकर लापरवाही करेंगी, जानबूझकर बीमार पड़ेंगी ताकि मैं आपका इलाज करूं? जानबूझकर कहाँ बीमार पड़ रही हूँ, एक संभावना बता रही हूँ कि अगर बीमार पड़ गई तो आप इलाज कर देंगे हमारा, तो इतना घबराने की जरूरत ही क्या है? अहाना ने मीठी मुस्कान लबों पर बिखेरते हुए एक बार फिर लापरवाही भरे अंदाज में जवाब दिया और अपनी तितली जैसी पलकों को झपकाते हुए अक्षय को देखने लगी। उसकी बेफिक्री देखकर अक्षय ने भौहें से कोड़ते हुए आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरा और नाराजगी भरे लहजे में बोला, बहुत शैतान होती जा रही हैं आप, और आप दिन ब दिन और ज्यादा खड़ूस होते जा रहे हैं। जब देखो बस हमें डांटते रहते हैं और हम पर गुस्सा करते रहते हैं। अहाना ने मुंह टेढ़ा करते हुए उखड़े स्वर में कहा और नाराजगी से गालों को गुब्बारों जैसे फुला लिया। अहाना की बातें सुनकर अक्षय की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। पहले उसने बेयकीनी से अहाना को देखा, फिर अगले ही पल आंखें छोटी छोटी करके अहाना को घूरा और तल्ख लहजे में बोला, मैं आपको डांटता हूँ और आप पर गुस्सा करता हूँ, पर मुझे ऐसा करने पर मजबूर कौन करता है? मुझे क्या शौक चढ़ा है आप पर नाराज होने का? एक तो आप अपनी सेहत को लेकर इतनी लापरवाह रहती हैं, खुद का जरा भी ख्याल नहीं रखती, मेरी बात नहीं सुनती, और फिर मैं कुछ कह दूं तो दोष भी मुझे ही देती हैं। अक्षय के बिगड़ते तेवर देखकर अहाना ने घबराते हुए कहा, अच्छा अच्छा, आप सही और हम गलत, सारा दोष हमारा है, आप कुछ नहीं करते। आपको हमसे शिकायत है ना कि हम अपना ख्याल नहीं रखते, तो हम आपकी ये शिकायत दूर कर देंगे, बस आप गुस्सा मत कीजिए। उसकी घबराई हुई मासूम सी सूरत देखकर अक्षय ने गहरी सांस छोड़ते हुए खुद को शांत किया और गंभीर स्वर में बोला, अनु, खुद पर ध्यान क्यों नहीं देती हैं आप? मम्मी को किसी काम के लिए इनकार क्यों नहीं करती? आप भी इंसान हैं, कोई मशीन नहीं कि सारा सारा दिन काम में लगी रहें और थकान भी ना हो, आराम की जरूरत भी ना पड़े। अब तो दो दो मेड रखी हुई हैं, फिर भी आपको एक मिनट के लिए भी फुर्सत नहीं होती? मेड है पर इस घर की बहू होने के नाते सब काम तो हमें ही देखने होंगे ना। मेड ठीक से काम कर रही है या नहीं, उनसे क्या करवाना है और क्या नहीं, ये तो हमें ही देखना होगा। हमारे घर में किसको कब किस चीज़ की ज़रूरत है ये हमें ही ख्याल रखना होगा। और अभी घर में लोग ज़्यादा हैं इसीलिए वक्त नहीं मिलता, एक दो दिन में जब चले जाएंगे फिर अपने आप काम कम हो जाएगा, तब तक तो हमें सब करना ही होगा। पर आप परेशान मत होइए, हम ख्याल रखेंगे अपना। अब अगर आपकी इजाज़त हो तो हम जाएं, अभी नहाना भी है और सबके चाय नाश्ते का इंतज़ाम भी करना है, देर हुई तो मम्मी जी चिल्लाना शुरू कर देंगी और हम नहीं चाहते कि इतने मेहमानों के बीच कोई हंगामा हो। अहाना भी गंभीर लग रही थी। अपनी जगह अगर अक्षय सही था तो गलत तो अहाना भी नहीं थी। अक्षय भी उसकी बातें समझ रहा था और विवश था कि उसके लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता था। अक्षय ने सहमति में सर हिलाया, फिर आगे बढ़कर उसके माथे को चूम लिया। अहाना ने भी सौम्य सी मुस्कान सजाते हुए अपने नर्म लबों के छाप को उसके गालों पर छोड़ा और कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई। नहा धोकर तैयार होकर रसोई में पहुंची और अपने काम में लग गई। अहाना चाय कप में छान रही थी जब रूपाली जी की आवाज सुनकर वो तुरंत ही उनकी ओर पलट गईं। जी मम्मी जी। अब उनके आने से अहाना के चेहरे पर घबराहट के भाव नहीं उभरते थे बल्कि चेहरा सपाट था जिस पर कॉन्फिडेंस झलक रहा था। तुम्हारी बहन उठी कि अभी तक सो ही रही है? वही पुराना शब्दों से पत्थर मारने वाला तल्ख कड़क लहजा था। इनफैक्ट जिस तरह उन्होंने सवाल किया ऐसा लग रहा था जैसे अहाना को कुछ चताने की कोशिश कर रही थी। हमारी बहन, वो हमारे मायके में है, यहाँ वो हमारी छोटी बहन नहीं, इस घर की छोटी बहू के दर्जे से आई है, अहाना ने सपाट लहजे में जवाब दिया। उसने भी अपने शब्दों से उन्हें एहसास दिला दिया था कि अब अंतरा सिर्फ उसकी बहन नहीं इस घर की बहू भी है। अहाना का यूं पलटकर जवाब देना उन्हें नागवार गुजरा और चेहरे पर आक्रोश के भाव उभर आए। ये सब तुम्हारा ही किया धरा है,
पहले खुद नागिन जैसे फन फैलाए हमारे घर में कुंडली मारकर बैठ गई और अब अपनी बहन को भी यहाँ हमारी छाती पर मूंग दलने को ले आई। उनके शब्दों में इस रिश्ते के लिए अस्वीकृति, उनकी नाराजगी और गुस्सा साफ छलक रहा था। अहाना ये बात पहले कई बार सुन चुकी थी, इसलिए उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, पर आज चुपचाप उनकी बेहूदी बातें सुनने के बजाय अहाना ने पलटकर उनकी बात का जवाब दे दिया। हम अपनी मर्जी से इस घर में नहीं आई थी, आपके आशीर्वाद के साथ आपके बेटे ने हमसे शादी की थी और हमें इस घर में लेकर आए थे। रही बात हमारी बहन की, तो हम खुद कभी नहीं चाहती थी कि वो बहू बनकर इस घर में आए, पर ये अन्वय की जिद थी जिसके आगे आपको भी झुकना पड़ा और आपकी स्वीकृति के बाद ही अंतरा की अन्वय से शादी हुई है। आप उसे इस घर की छोटी बहू बनाकर यहाँ लाई हैं, हम नहीं। तुम्हारी बहन ने हमारे बेटे को फंसा लिया, पता नहीं दोनों बहनों ने मिलकर हमारे बेटों पर कौन सा जादू टोना किया है कि उन्हें अपने काबू में कर लिया है। हमारे बेटे हमारी ही नहीं सुनते।